الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأصول معزز ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ کریم کا ارشاد ہے اور ایسے لوگوں سے جب اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں خواہ ان کا اجداد نہ کچھ سمجھ ہی رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں۔ اس آیہ کریمہ سے پیشتر جو دو آیات کریمہ ہیں اس رکوع کی جہاں ابتدا ہے وہاں سے دیکھیں تو پھر یہ بات واضح سمجھ آئے گی کہ یہ کیفیت اور حال ایسا کیوں ہے۔ اور یہ پہلے حصے پہلے بیانات میں گزر چکے ہیں لیکن آج کی جو گزارشات پیش کرنی ہیں انہیں گوش گزار کرنے کے لیے میں ان آیات کریمہ سے آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں۔ یہاں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ارشاد فرمایا، کل انسانیت کو مخاطب فرمایا کہ لوگو زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ معزز سامعین کرام، خوراک بنیادی ضرورت ہے، جیسے سانس ضرورت ہے اسی طرح کھانا پینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کا رزق اس نے مقرر فرمایا، کہاں ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ ایک پورا باب ہے جس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ کریم نے جو حیات عطا فرمائی اور اس سبب کے جہان میں جو سبب بنیادی زندگی کے ساتھ منسلک فرمایا ہے، ان میں خوراک بھی ہے۔ اب کھانا ہے، بنیادی ضرورت ہے اور مجبوری ہے۔ حالاں نور ایمان جو ہے یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ بندہ ایمان لائے۔ اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا اور اس کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو بہت بنیادی شے ہے کہ بندہ ایمان لائے۔ لیکن اللہ کریم نے اسے لازم اس پہلو میں نہیں فرمایا کہ کوئی پابند ہے، زندہ رہنا جب تک اس نے زندگی دی ہے اور مذہب اختیار کرنا یہ اس نے آزادی دی، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس راہ اختیار کرنے کا، فیصلہ کرنے کا جو اختیار نہیں ہے۔ بنیادی زندگی سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ انہیں اللہ کریم نے تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح نور ایمان سے محروم انسان جو ہے وہ دنیا کی تخلیقات میں، دنیا کے بے شمار عجائبات جو بنا رہا ہے اور استفادہ کر رہا ہے، یہ بنیادی انسان میں تخلیقی وصف ہے کہ وہ ان اشیاء کے جوڑ سے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق اشیاء جو ہے انہیں ایجاد کرتا رہتا ہے۔ تو وہ حصے جو اسے مقصد حیات سے آشنا کرتے ہیں وہ بنیاد جو ہے وہ نوری ایمان سے، لیکن اللہ کریم نے اسے لازم اس پہلو میں نہیں فرمایا کہ زبردستی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن زندگی या ज़िंदगी के जो पहलू हैं उसमें खुराक बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। अगर खाना ना हो तो फिर मौत वाक़ हो सकती है, इसी तरह पानी मुयसर ना आए तो मौत वाक़ हो सकती है, फ़िज़ा में से आपको ऑक्सीजन ना मिले, सांस बंद हो जाए। तो इसी तरह जब ये ज़रूरत अल्लाह ने दी है तो उस ज़रूरत के जो ज़राए हैं उन्हें भी देखने की ज़रूरत है, हलाल और तैयब शय। अब हलाल और तैयब शय अल्लाह करीम ने लोगों ज़मीन में मौजूद, यानी ये हर शय अल्लाह करीम ने अता फरमा, मिम्मा फिल अर्ज, ज़मीन में यह हर शय मौजूद है, जहाँ उसने तुम्हें पैदा फरमाया है तुम्हारी ज़रूरियात उसने ज़मीन में रख दी। अब खाने में हलाल और तैयब, ये अल्लाह करीम ने कुल इंसानियत को यह इरशाद फरमाया यहाँ पर, चूँकि दावत हक तमाम इंसानों को है, तमाम इंसानों को बुनियादी तौर पर अल्लाह करीम ने उस कैफियत के साथ पैदा फरमाया कि वह हक को समझ सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। कुरान अहदीस की आयात कुरान की आयात और अहदीस से ये चीज़ मिलती है कि पैदाइश ऐसी है कि उसमें हक को हासिल करने और हक को समझने इख्तियार करने की इस्तेदाद मौजूद है। परवरिश में हालात व वाक़ात और उसका ज़ाती फ़ैसला जो है कि ये मामलात पेश आते हैं तो वो फिर जिस राह का इंतखाब करता है उस राह का मुसाफिर हो जाता है। तो यहाँ जब अल्लाह करीम ने हिस्से बयान फरमाए तो इसमें दावत का ये पहलू कि मुतलिक इंसान अगर रिज़्क़े हलाल की कोशिश करे और पाकीज़ा की कोशिश करे तो ये उसकी बुनियादी ज़रूरत न सिर्फ वजूदी पूरी फरमाता है बल्कि उसे एक मुसबत पहलू सोच कर भी अता फरमाता है। अब जब हलाल हिस्सों पर बात आएगी तो ये पहलू भी कि ज़मीन ही में हर शय का खाना दुरुस्त नहीं है, जो शय हलाल है जिसे उसने हलाल किया, उस हलाल में इंसानी जो वजूदी ज़रूरियात हैं उनसे लेकर जो उसकी रूहानी और ईमानी पहलुओं तक इससे जो मददगार साबित होते हैं वो भी इससे नसीब होते हैं। कोई खुराक मेडिकली अगर वो दुरुस्त है, हाइजीनिकली दुरुस्त है तो कोई भी उसे खाए तो वजूद की ज़रूरत वो पूरी करेगी, यानी वो भूख भी मिटाएगी और वजूद को तवानाई भी देगी। लेकिन अगर वो हलाल नहीं होगी तो उस हराम खुराक का एक असर उसकी कैफियत और हाल पर पड़ेगा, जिसे आप ये कह सकते हैं कि ज़ाहरी पहलू ने जहाँ वजूद को तकवीयत दी लेकिन हराम होने के सबब जो उसके असरात हैं उसने उसे रूहानी बीमारी दी। जब वही खुराक हलाल होगी तो वो वजूदी ज़रूरियात भी पूरी करेगी और रूहानी तौर पर भी इंसान को तकवीयत नसीब होगी। तो जब रूहानी तौर पर तकवीयत नसीब होगी तो ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ना करे कि कोई कमी बेशी वो जो हमारे मामलात में हमारी कमज़ोरियाँ कोताहियाँ, लेकिन ये आमाल इख्तियार करने से मुसबत पहलू नसीब। और जहाँ या यो नास इरशाद फरमाया है तो ये भी बात समझ आती है कि वो भी अगर ज़राए जो हैं वो जायज़ रखें और ख़ुराक वो जो अल्लाह करीम ने जिसे हलाल इरशाद फरमाया है, चाहे वो ज़राए के पहलुओं से आए या चाहे मखसूस हिस्से बयान फरमा दिए हैं खुराक के हवाले से, जैसे कुछ जानवर हैं उनके हवाले से फरमा दिया है, जिस नस्बत से उन्हें ज़बह किया जाए या काटा जाए उस हवाले से बयान फरमा दिया गया है, किसी का छीन कर लिया जाए, तो वो भी अपने वसाइल जो जायज़ हैं उन्हें बरूकार लाते हुए वो शख्स जो साहिब ईमान नहीं है वो भी अगर जायज़ ज़राए से ख़ुराक खाए फिर उसकी पाकिजगी में बेशुमार पहलू शामिल हो जाते हैं। जैसे हम कपड़ा धो कर पाक करते हैं लेकिन अगर पानी ही ना पाक हो तो उसे धोते रहें 100 बार धो लें वो पाक कैसे हो। तो इसी तरह अगर खुराक के पकाने में उसे जमा करने में कोई ऐसा अंसर शामिल कर दिया जो है हराम तो वो तो सारे को ले जाएगा, लेकिन अगर वो पाकीज़ा नहीं है तो उसका नापाकी जो है उसके असरात आ जाएंगे। जैसे वजूद नापाक है और वो हाथ तो धो रहा है हाइजीनिकली तो ठीक होगा लेकिन उसका वजूद नापाक है और वो उस नापाक वजूद से खाना बना रहा है तो वो भी असरात आएंगे। तो जब इस इन तमाम पहलुओं से देखकर कोई साफ खुराक हो, हलाल हो, तैयब हो, पाक हो यानी, तो उसके असरात वजूद पर भी जो मुरतब हो रहे हैं वो भी और बेहतर होंगे और रूह को भी तकवीत नसीब होगी। तो अल्लाह करीम ने जब ये इरशाद या अय्युहन नास फरमाया तो गौर फरमाएं फिर इसमें कितनी अहमियत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, वो जिन्हें साहिब ईमान अल्लाह करीम ने बनाया। तो अपने जो रिज्क के ज़राए हैं वो भी साफ होने चाहिए और रिज्क हलाल होना चाहिए। पैसे से आप हराम शय ख़रीद कर लाएं तो हलाल नहीं होगी, वो हराम की हराम रहेगी और पाक होनी चाहिए। तो जब हलाल और पाक चीज़ खाएंगे तो वो अच्छाई की रग़बत देगी, वजूद में सेहत का सबब होगी और रूह में वो कुव्वत आएगी कि नेकी की रग़बत पैदा होगी। फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, यानी हलाल से जो दूरी है, जो इस पहलू का इख्तियार न करना है वो शैतान की पैरवी है। तो शैतान कोशिश करेगा कि उसे ऐसी ग़िज़ा को मरगूब दिखाए जो हलाल ना हो, अगर हलाल ही पर आ गया तो फिर कोशिश करेगा कि पाक ना हो। तो फरमाया जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो वो इन्नौ लकुम अदुव मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन दुश्मनी करता है और दुश्मनी नुकसान होता है, तो वो कोई पहलू नहीं छोड़ेगा जो दुश्मन है कि तुम्हारा नुकसान कर दे। इसमें ये नहीं है कि उसकी दोस्ती जो कुफ्र कर रहा है उसके साथ है, वो कर उसके साथ भी दुश्मनी रहा है कि कुफ्र है तो मज़ीद बढ़े ताकि ये सज़ा इसे और बढ़ कर मिले। तो बुनियादी तौर पर वो इंसान से अपनी दुश्मनी कर रहा है, बदबख्त खुद है, तकब्बुर खुद किया, जलील रसवा हो रहा है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मखलूक को जो है हक से हटाए। मुस्लिम शरीफ की अहदीस शरीफ है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने बंदों को हनीफ पैदा फरमाया। और हलाल रिस्क उनके लिए अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमाया। तो शैतान ने वो पहलू जो अल्लाह ने हलाल फरमाए थे उन्हें उसकी तरगीब देता है, वो कहलाता है जो हराम है। अब अल्लाह ने तो हर बंदे को बुनियादी तौर पर हनीफ पैदा फरमाया, लेकिन फिर उसकी वो खुराक इस हदीस शरीफ में कि शैतान की पैरवी के ज़मन में आई। तो यहाँ फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। अब यहाँ एक पहलू मोहतरम सामईन कराम और भी आता है कि हलाल नहीं होगा तो फिर नक्श कदम शैतान ही का होगा जिस पर इंसान चल रहा। तो हलाल रिस्क जो है वो कुव्वत देगा, ये इस्तदाद देगा कि हक ना हक की पहचान आएगी। और शैतान ऐसा मनहूस है कि वो है दुश्मन, खुला दुश्मन, अदुव मुबीन, खुला दुश्मन है, कोई पोशीदा बात नहीं है, वाज़े और ज़ाहिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के मौके पर जो शीतनत उसने की उसे कुरान करीम ने बयान फरमाया। अल्लाह करीम से वक्त की ज़िंदगी की क़यामत तक जो उसने फुर्सत मांगी अल्लाह करीम ने उसे भी बयान फरमाया। और वो जो बुनियादी तौर पर दुश्मनी रखता है पहले दिन से, जिसका मौक़िफ़ है कि ये तो मुझसे कम तर है, मैं इसे सजदा क्यों करूँ, आपने इसे मिट्टी से पैदा फरमाया और मुझे आग की लौ से पैदा फरमाया तो मैं तो इससे बढ़ कर हूँ, ये मुझसे कम तर है, तो वो अपनी दुश्मनी कर रहा है। लेकिन ये कुव्वत नसीब होगी हलाल रिस्क से। मोहतरम सामईन कराम, दुनिया में सफ़र जो है बहुत आम हो गया है। एक वक़्त था लोग सफ़र बहुत कम करते थे, ऐसे भी लोग हमने भी देखे हैं कि जो अपने इलाके से बाहर नहीं गए, लेकिन अब किसी से भी पूछो तो वो दुनिया की बात करता है, एक मुल्क या खित्ते की तो पुजा वो दुनिया की बात करता है, कितने लोग हैं कि उन्होंने दुनिया के असफार किए हैं। फिर जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो इसने एक ग्लोबलाइजेशन पैदा कर दिए, हर एक हर जगह की खबर रखता है। इसी तरह ये जो सामान की तरसील है, भेजा जाना या सामान का दरामद होना या बरामद होना, इससे भी बेशुमार मखलूक जो है एक दूसरे तक अपना सामान भेज रही। इन सारी बातों में जायके को देखकर, किसी महक को देखकर, माज ये लज्जत जो जबान की है इसे देखकर, कोई शय खा ली जाए या पी ली जाए, लेकिन ये ना ख्याल किया जाए कि इसकी हुरमत किस सतह पर है, हलाल है या हराम। तो फिर जब हम सफ़र पर होते हैं तो ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जहाँ से गुजर रहे हैं अगर वहाँ हलाल जानवर भी मुयस्सर हो लेकिन वो शायद हलाल ना हो। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी तय पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके रिज़्क हलाल पाक हो। यहाँ कितनी ही ख़रीदारी हम करते हैं, जब आप उसे खोल कर पढ़ते हैं तो जाने क्या क्या चीज़ें उसमें आमेज़श होती है, किन किन चीज़ों को उसमें मिलाया गया होता। तो अब वो जो लुकमा हम अगर ना दानिश्ता तौर पर भी खाएंगे तो उसका असर तो होगा। अब उसकी गिरफ्त के पहलू पर बात हो सकती है कि किस दर्जे की हो, लेकिन जो उसके असरात हैं वो तो मुरतब हो जाएंगे। अब कोई जहर खाता है और गलती से खा जाता है और वो क्या हो, ये कह सकता है कि मैं गलती से जहर खाई है इसलिए जहर मुझ पर असर ना करे, तो जहर तो असर करे। तो ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए। इसी तरह ज़ाती हम अपने घरों में जब खाना बनाते हैं तो जो पानी का इस्तेमाल है, जो पकना पकाना है, बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह लंगर मखदूम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बड़े हज़रत की खिदमत में जा रहे थे तो वक्त पुराना था। हज़रत जी ये वाक़ा बयान फरमाते हैं कि बड़े हज़रत कुलज़म फ़ैज़ात मौलाना अली अरखान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेख के मज़ार पर जा रहे थे तो वक़्त ऐसा था कि इस तरह की सड़कें या गाड़ियां या इतना सफ़र आसान नहीं था, तो कहीं गाड़ी होती थी, कहीं तांगा हो गया, कहीं पैदल चलना पड़ा, तो इस तरह करके सफ़र उस वक़्त किया जाता था। तो वो फरमाते हैं कि उन्हें एक आबादी में राहत आ गई, तो जब वहाँ रुके तो लोग जो है एक दीनी पहलू से आपका एहतराम उन्होंने बहुत किया, तो उन्होंने खाने की पेशकश की कि शाम है खाना है। तो हजरत ने फरमाया कि कोई नमाजी जो है खातून खाना जो खाना बनाने वाली हैं कोई नमाजी बीबी हो तो मुझे उसकी चपाती देना। पूरे आबादी में उन्होंने फिर अर्ज़ की कि हजरत कोई ऐसी खातून नहीं है कि जो नमाजी हो तो आप खाना खा लें। आपने फरमाया नहीं, फिर ऐसा करो कि कोई नमाजी शख्स जिसके हाथ से दूध दुआ गया हो वो प्याला मुझे दे दो, मैं उस पर गुजारा कर लूँगा। उन्होंने खाना नहीं खाया, रात उसी दूध के प्याले पर बसर की, सिर्फ इसलिए। अब ये नहीं कि वो जो चपाती थी वो हराम थी, लेकिन नमाज न पढ़ना जो उस वजूद पर असरात मुरतब हो रहे हैं, वो जो जो काम कर रहा है उन उमूर में वो असरात जा रहे हैं। आपने इतनी एहतियात बरती कि खाने में हलाल हो, तैयब हो, फिर तैयब का ये मकाम हो कि पकने में भी कोई कमी बेशी वाक़ा ना हो। अब जितना तैयब होगा खाना उतने उसके असरात मुस्बत, और जितनी कमज़ोरी आएगी उतने उसके असरात। अब आप देखें कि गर्मी है या सर्दी है, उसकी जब शिद्दत होती है तो कोई बताने की ज़रूरत होती है या कहने की ज़रूरत होती है, हर कोई महसूस कर रहा होता है। इसी तरह असरात हैं। तो जो हराम चीज़ खाई जाएगी मदद सामिन कराम वो शैतान के पीछे लेकर जाएगी, और जो हलाल होगी और उसकी पाकीज़गी में जितनी निखार लाया जा सके लाया जाए तो वो हिफाजत इलाहिया का सबब हो। और वो तो दुश्मन है, उसने तो दुश्मनी करनी है। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू वल फहशा व अन तकूलू अलल्लाह मा ला तअलमून, बिलाशुबा वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का मशवरा देता है। अब जब हराम रिज़्क खाया उसके राह पर चला, अब वो क्या दुश्मनी करेगा, वो कोई बुरा काम करेगा। कि कोई ना कोई बुराई जो है वो सरजद हो। अब बुराई सरजद हो फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत ये पैदा हो जाती है कि बुराई बुराई नहीं लगती। इसीलिए हम मुआशरे में ये बातें सुनते हैं कि किसी कहीं किसी ने ज्यादती की है या चोरी डकैती की है या कत्ल किए हैं तो वो अपनी महफिल में बैठकर ये शोखी बखेर रहे होते हैं कि देखो मैंने तो इतने कारनामे किए हैं, मैंने वहाँ ये डाका किया, मैंने वहाँ ये कत्ल किया। अपनी गलती पर फख्र कर रहे होते हैं, ज्यादती पर फख्र कर रहे होते हैं। क्यों? कि अब वो बुराई जो है वो इतनी ज़्यादा हुई कि बढ़ती बढ़ती फिर उसने बेहया कर दिया कि फिर वो बुराई बुराई ना रही। अब बात रुकती नहीं है, जब बुराई से बंदा बढ़ता है तो फिर बेहया हो जाता है। तो शैतान यही मशवरा देता है, इसी राह की तरफ लगाता है। और अल्लाह के ज़िम्मे फरमा ऐसी बातें लगाने का कहता है जो तुम जानते भी नहीं। फिर शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कि जाने जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये है कि नहीं, इसकी शर्फ कबूलियत की बात है कि नहीं, आखरत मशकूक तो नहीं। दोबारा उठना, कितने बड़े बड़े इतराज़ कुफार ने किए कि जब हम खाक हो जाएंगे, हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी तो दोबारा कौन उठेगा? तो कुरान करीम ने जवाब दिया कि पोर पोर जो है वो सलामत किया जाएगा। तो सिर्फ एक आवाज़ की देने का बात है, हर कोई जमा होना शुरू हो जाए। तो फरमाया कि ये जो वो फिर तुम्हें वो बुराई बुराई में ले जाएगा, फिर बुराई में जब धंस जाओगे तो फिर बेहयाई आएगी, यानी और उससे बुरा काम ये होगा कि फिर बुराई बुराई ना लगेगी। और जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो फिर अगली बात वो ये ले जाएगा कि वो फिर कुफ्र की तरफ ले जाएगा। अल्लाह करीम के जिम्मे ऐसी बातें लगाने का कहता है वन तकुलू अल्लाह माला ताला, मुझे तुम जानते नहीं हो, अपनी हद से तजावज कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हें कुरान करीम ने तालीम दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत अता फरमाई। अब जब मशकूक हो गए तो फिर ईमान डोल गया, तो जब ईमान डोल गया तो पलटना ना नसीब हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेईमान हो गया। जब बेईमानी आई तो फिर बात रुकेगी नहीं, फिर वो मजीद कोशिश करेगा कि जितनी दोज़ख़ की गहराई में जा सकता है इसे उतना जाए। अब ये वो सारे पहलू हैं मौज़ा सामीन कराम इस आया करीमा जो मैंने आज पहले खुतबे में तलावत की है ये समझने के लिए। और फरमाया वाक़ी लाला मुत्तबू मा अंदल्लाहु, तो जब उनसे कहा जाता है कि अमल करो उस पर जो अल्लाह करीम ने तुम पर नाजल फरमाया, पहले अल्लाह पर वो एतराज़ कर लें वन तकुलू अल्लाह माल तालम। अब ये देख लें कि हराम खाने से कहाँ तक बात पहुँची। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती उसके साथ जो है दुश्मन, एतराज़ वहाँ जिस खालिक ने पैदा फरमाया, जहाँ इबादत करनी है वहाँ मुतरिज़ हो गया। और जो तालीम दी गई, जो तरबियत दी जा रही है उसका इनकार करना शुरू कर दिया कि अल्लाह करीम के नाजर करदा आहकाम पर अमल करने का कहा जाए, तो कहते हैं अल्लाह जो अल्लाह ने नाजर फरमाया उसके उस पर अमल करने का कहा जाए तो कहते क़ालू बल नत्तबु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, मैं तो वो करूँगा जो मेरे आबाओ अजदाद करते हैं। तो यही बात तो बड़े बड़े कुफार ने की, हम कैसे छोड़ दें अपने आबा का जो मज़हब है उसे हम कैसे छोड़ दें, हमारी तो नाक कट जाएगी, हम तो माशरे में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। इसी पहलू को जब हम साहिब ईमान देखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में रस्म व रिवाज को कितनी जगह देते हैं, इसलिए देते हैं कि एक रस्म आ रही है और वो भले नस्लन बाद नस्ल इख्तियार की जाए लेकिन उसके उसका जो मेयार है कि वो दुरुस्त है या नहीं, वो तो कुरान और हदीस है, जो अल्लाह करीम ने फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, मेयार तो वो है। लेकिन हम किस लिए इख्तियार कर ले चले जाते हैं? इसलिए कि ये तो हमारा रिवाज है, रस्म है, और अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारी तो माशरे में जो है नाक कट जाएगी। तो ईमान ज़ाया करने से नाक कट जाना इसकी अहमियत, तो ये 100 दफ़ा नाक कट जाए इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन ईमान सलामत रहे तो सारी बात आ जाएगी। ताल्लुक में अल्लाह जो है वो मुकद्दम हो तो फिर ये बातें समझ आए। जब वो ताल्लुक मुअख्खर हो, एक इकरार रिवाजन रह जाए हमारे पास कि हाँ जी अल्लाह को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन कोई हुक्म ना मान रहे हैं, इत्तबा का कोई पहलू हमारे पास ना हो, वहाँ हम कहेंगे जो रस्म रिवाजात हैं हम वो करेंगे। बल्कि इस ताल्लुक और इस बंदगी को, इस निस्बत उम्मती की जो है इसको, और जो बंदगी के पहलू हैं इसे भी हम रिवाजात में ले जा रहे हैं, तो कितना बड़ा सवाल अपने लिए खड़ा कर रहे हैं और हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि इन नज़ाकतों को समझा जाए, देखा जाए। माह मुबारक रबीउल अव्वल है, कितने ही बयान मैं इस हवाले से कितनी जगहों पर कर रहा हूँ, और पता नहीं कितनी जगह पर जाना होगा, और कितनी ही प्रोग्राम का इनेकाद देखा है और उसका अंदाज देखा है, ज़रा अबलाग में देखा है, सुना है, तो क्या उसमें हदूद क़यूद का ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये बात के फिकी तौर पर एक दूसरे का एतराज़ उसे लेकर, इस जो इजहार मोहब्बत है या इजहार अकीदत है इसमें शिद्दत आ जाए या इसका इनकार कर दिया जाए, तो फिर मुकद्दम तो ज़ात या ना हो गई ना जी। जो मैं कहता हूँ बात तो उस तरफ चली गई, तो मुकद्दम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है, और वो रिश्ता ईमानी है, मुकदम तो वो रहा। तो जब बुनियादी तौर पर हराम खुराक में आएगा तो फिर इस दर्जे की बेहयाई हो जाएगी कि अल्लाह करीम की जो फरमान है वो मशकूक लगेंगे, उन पर एतराज उठना शुरू हो जाएगा, और जब उन पर एतराज उठना शुरू हो जाएगा तो फिर बात ख़त्म नहीं होगी, उनका रद्द आएगा कि जी नहीं है, हमने तो वो करना जो हमारे आबाओ अजदाद कर रहे हैं वो बेहतर है, हम तो वो करेंगे। अब अमल पर आ गया, वो सारी कैफियत जो उसके असरात थे, अब गौर फरमाए मौजूद सामीन कराम, वो लुकमा जो हराम का है उसने कहाँ शैतान की राह पर चलाया, कहाँ तक एतराज पर ले गया, अब अमल पर बात आ गई। क्या करेंगे? वो करेंगे जो आबा कर रहे थे। अवलोकान आबाहुम ला याकिलून शैयं वला यहतदून, फरमाया खा उनके अजदाद न कुछ समझ ही रखते हैं और न सीधी राह पर। अब रस्मों रिवाजात का मियार जब मुकरर किया जाएगा तो बुनियादी तौर पर जो गलत और सही है उस पर आकर पैमाना होगा। अब वो पैमाना जो पैमाना कहलाएगा वो वही होगा जो हक है और हकीकी है, जो अल्लाह करीम ने जाना होगा। कलाम ज़ाती हमें हक की तालीम दे रहा है, तरबियत दे रहा है, ये कलाम अल्लाह की रहमत है, ये कलाम राह हदायत है, ये कलाम नताइश से आगाही अता फरमाती है, और कैसी कैसी बारीकी बयान फरमाई जा रही है कि एक लुकमा हराम का जो है वो कहाँ तक ले जाएगा, कि वो लुकमा हराम जो है ऐसी कैफियत पैदा करेगा कि शैतान की दुश्मन जो दुश्मनी है वो दुश्मनी न लगेगी, ऐसे एतराज़ पैदा कर देगा कि जो न तुम जानते हो न तुम्हारी हैसियत और तुम कहाँ बात कर रहे हो अल्लाह की तरफ नस्बत करके, फिर ये बुराई बेहयाई तक पहुँचा देगी और सूरत हाल ऐसा पैदा हो जाएगी कि अमल तक नौबत आएगी तो फिर तुम मोतरज़ होगे, हक छोड़ दोगे, वो काम करोगे जो कहोगे कि मेरे आबाओ अजदाद कर रहे हैं मैं तो वो काम करूँगा। और अल्लाह करीम फरमा रहे हैं तो उनकी क्या हैसियत है, जो रवाजात या रस्म तुम ले रहे हो वो उन्हें भी तो उसी ने पैदा फरमाया, वो सारी मखलूक, तो उनकी क्या हैसियत है कि वो अल्लाह के मुकाबले हैं, क्या तुमने उनकी इबादत का ऐलान किया है, क्या तुमने उन्हें तुम शिर्क कर रहे हो कि उन्हें अल्लाह के मुकाबले ला कर खड़ा कर रहे हो, हक का इनकार कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो। तो जब बात इस बारीकी और परख पर जाएगी मौजूद सामीन कराम तो फिर मामला नाजुक हो जाएगा, और कोई बात, कोई कलाम, कोई उसूल दुरुस्त नहीं है تاہاں کہ وہ قرآن و سنت کے تحت. اگر یہاں سے باہر ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس سے کوئی منفعت حاصل نہیں ہو سکتی, آخر کار وہ نقصان دے گا. وقتی لذت ہوگی, آخر نقصان ہوگا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. فرمایا, اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو سوائے شور اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. ندا, جیسے دور سے آواز دی جا رہی ہے, سن رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں رہا. تو جو کفر ہے اس کی مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ اس حد کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے کہ ہدایت سلب ہو جائے, مور لگ جائے, مور سبت ہو جائے, تو پھر ایسے ہی ہے جیسے جانور کو کوئی آواز دے رہا ہو تو جانور شور سنتا ہے کہ آواز کا کوئی آواز ہے, کوئی شور ہے, سمجھتا نہیں. اللہ کریم نے یہ مثال دی کہ پھر یہ مثال اس جانور جیسی ہے جو سن تو رہا ہے, دیکھ تو رہا ہے, نہ وہ سن پا رہا ہے, نہ وہ سمجھ پا رہا ہے, نہ وہ دیکھ پا رہا ہے, اور نہ اس سے کچھ حاصل کر رہا. حالان ظاہری وجودی طور پر سماعت بھی درست ہے اور بصارت بھی درست ہے, لیکن دونوں پہلوؤں کا وہ حصہ کہ یہ حق سمجھ سکے, دیکھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب تشریف لے گئے دعوت حق کے لیے تو ایسے بدبخت ہوئے لوگ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے, اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا خون مبارک بہ کر نالین مبارک میں پاؤں مبارک جمے, اور اللہ کریم کے فرشتے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف کے پہاڑ الٹ دیے جائیں. اور یہ پہلے ہوا. اقوام سابقہ میں جو زمین ہے یہ الٹ کر پٹخ دی گئی, قرآن کریم بیان فرماتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم عالی ہے. اللہ کریم سے آپ نے رحمت مانگی کہ یہ نہیں جانتے, یہ محمد بن عبداللہ کو پتھر مار رہے ہیں بارے لائے, یہ محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. تو آپ نے درگزر فرمائی کہ یہ نہیں حق اختیار کر رہے, کل شاید ان کی اولاد حق اختیار کر لے. تو وہ ایسے اندھے تھے. اب مجھے بتائیں جو پتھر مار رہا ہے, خیر القرون کا زمانہ ہے, تمام زمانوں میں افضل زمانہ, دعوت حق میں یا اس مقام پر دعوت حق ارشاد فرما رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء, خاتم النبیین, آپ دعوت حق فرما. اب جو سن رہا ہے اسے جانور سے بھی بدتر نہ کہا جائے تو کیا نہ کہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا, وہ جواب میں سنگ باری کر رہے ہیں, اور آپ ان سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ ان سے کوئی دنیا کی منفعت مانگ رہے ہیں؟ آپ انہیں حق کی تعلیم دے رہے ہیں, آپ کا ارشاد عالی ان کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے, وہ سن نہیں رہے. تو جانور نہیں ہے تو کیا, سوائے ایک آواز کے, اور صدقے جائے بندہ اس مبارک آواز کے کہ وہ مبارک آواز سننا نصیب ہو جائے تو یہ سرمایہ ہو, روز معاشر بخشش کا سبب ہو جائے. معزز سامعین کرام, آج بھی علماء جب بحث کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور فضائل کے حوالے سے, آپ کی زیارت خواب میں جسے نصیب ہو جائے, خواب میں بھی آپ کی زیارت مبارک جسے نصیب ہو جائے, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کا سبب ہو جائے. کیسے بدبخت, تو پھر کل بل ہم اضل, وہ بڑھ کر ہیں جانوروں سے برے ہیں. تو فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو سوائے شور اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. فرمایا یہ بہرے, گنگے अंधे हैं बस वो अकल से महरूम है। कुरान करीम में कलाम ज़ाती है, हतमी बात फरमाई जाती है, जिसमें हर पहल कुल्ली तौर पर हतमी बात है। फरमाया ये जो हक नहीं सुन पा रहे, सुम्म बेरे हैं, बुकमन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फम लाया के लून पस वकल से महरूम है। ये कोई अकल का काम नहीं है जो हक से मुकाबिल आ रहे हैं, हक छोड़ रहे हैं, आगे इख्तियार नहीं कर रहे। एक वक्त और एक मौका आएगा कि इस वक्त पर हसरत की जाएगी, काश ऐसा ना किया। तो आज जो ये बेअकली इख्तियार की जाए तो फिर एक वक्त आएगा कि ये मौके, ये वक्त हसरत बनकर याद आए। तो मज़द सामिन कराम, यहाँ मुखातिब जब काफिरों को फरमाया जा रहा है, ये कैफियत और हाल वहाँ बयान फरमाई जा रही है, लेकिन हलाल का खाना, फिर उसका पाक होना, फिर अल्लाह करीम के अहकामात का मानना, इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम इस ताबे रहना, और शकूक व शुबहात में न पड़ना, अमल आयत और रस्म व रिवाजात को रद्द करना और अल्लाह का हुक्म मुकद्दम रखना, फिर ये जो मिसाल कि हक की आवाज़ आए तो उसे समात करना, हक को देखना, तो ये अवसाफ जो हैं मुसलमान के। और जब बंदे मोमिन अपनी मामूलात ज़िंदगी में ये ख्याल न कर रहा हो तो वो फिर किस राह का मुसाफिर है। तो जब ये हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहेगी तो मज़े सामीन करम, अगर मैं सादा अल्फाज में एक सम अप करूँ अपनी गुजारशात को, तो हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहेगी तो इख्तिताम फिर यहाँ जाकर होगा, फिर देखती आँखों अंधे होंगे, सुनते कानों बहरे हो, और ज़बान हक पर न रहेगी, न हक पर जो है वो शहादतें दे रही होगी, हक की शहादत न रहेगी। फम लाया के लून, तो सारी अकल व खिर जो हम गिनते हैं, बड़ा अकलमंद है जी, बड़ी पते की बात कर रहा है, और जिस बात में हक नहीं है, जो बात आखिरत की तरफ नहीं पहुंचाती कि वहां की सदाकत नसीब हो, उसमें क्या अकल, वो कौन सा अकलमंद है, वो कौन किसे किसकी दानिश है जो हक से महरूम है, वहां दानिश है क्या। तो अल्लाह करीम हमारी कमी बेशी माफ फरमाए, हमें दीन को समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।